नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अंगोला की संसद को संबोधित करना अत्यंत गौरव की बात है। उन्होंने देश के अंगोला की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर शांति और लोकतंत्र तक के प्रेरणादायक सफर की सराहना की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और अंगोला के राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के साथ साथ अंगोला की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती होने के कारण वर्ष 2025 का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि अवसर दोनों देशों के लिए आपसी प्रेरणा का स्रोत है।
ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ।
इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने फोर्टालेजा डे साओ मिगुएल क्ले का दौरा किया। यहाँ सशस्त्र बलों का संग्रहालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूटान की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक की 70वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे से भी मुलाकात करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शहरी सहकारी बैंकों को महत्वाकांक्षी युवाओं और समाज के वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए आगे आना चाहिए। नई दिल्ली में आज शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहकारी कुंभ 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक और ऋण समितियां संघ और शहरी संगठनों को दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, जिनके आधार पर प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक अपने वित्तीय ढांचे को नया स्वरूप प्रदान करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश ने वर्ष 2024-25 में लगभग 1,51,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है। इसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का योगदान 71.6% है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में विश्व व्यापार केंद्र में अत्याधुनिक केंद्रीय सुविधा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम भवनों का लोकार्पण करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रक्षा निर्यात 6,695 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान की सफलता स्वदेशी उत्पादों की विश्वसनीयता और क्षमता का प्रमाण है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में कल 20 जिलों की 122 सीट पर मतदान होगा। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता 1,302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 136 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सुरक्षा कारणों से 1,202 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक ही वोट डाले जा सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में एनडीए की ओर से सबसे अधिक 53 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और 44 उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में हैं। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 15, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 6 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल 71 और कांग्रेस 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाले विकासशील इंसान पार्टी ने 8 और सीपीआई माले ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 12 कैबिनेट मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
7 राज्यों की 8 विधानसभा सीट के लिए भी कल ही वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनावों के साथ होगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर रेल और हवाई दुर्घटनाओं से संबंधित एक वीडियो में किए गए दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी एचएस प्रणॉय और लक्ष्य सेन कल से शुरू हो रहे कुमामोतो मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करेंगे। लक्ष्य सेन पहले दौर में जापान की कोकी वतनबे से और प्रणॉय मलेशिया के जुन हाओ लियोंग से खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।